मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 12 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि कल YouTube पर AFEIS.com के तहत एक प्रोग्राम डाला गया है जो इकोनॉमिक्स की तैयारी के ऊपर है, यानी कि यूपीएससी के लिए आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करेंगे। यह प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, यानी कि मैं जो भी बातें बताई जा रही हूं मेरे द्वारा बताई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एक बार आपको इस यूट्यूब के प्रोग्राम को जरूर देखना चाहिए। इससे आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स को लेकर के जो द्वंद्व हैं, जो भ्रम हैं, परेशानियां हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उसको क्लियर करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और उसी के शुरुआत में मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी के बारे में ही उससे पहले डले हुए प्रोग्राम की चर्चा की है और स्पेशली मैंने ये कहा है कि प्लीज इस प्रोग्राम को देखने से पहले आप उस प्रोग्राम को जरूर देख लें। यानी कि अगर आपने इन दोनों प्रोग्राम को देख लिया तो आप महसूस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो रास्ता है, जो पहले थोड़ा सा जंजाल जैसा दिखाई दे रहा था, वो कितना स्पष्ट दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों मेरी सलाह है कि प्लीज आप इसे जरूर जरूर और जरूर देखें। आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग नल से जल, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पूर्व बैठकें शुरू कर दी हैं। देखिए होता क्या है कि बजट तो सरकार बनाएगी और बहुत ही गुप्त तरीके से सरकार बनाती है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं तो सरकार बजट कैसे बनाती है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि ठीक है, जितने भी हमारे मंत्रालय हैं वो सब अपने अपने लेवल पर अपने अपने विभाग के लिए बजट बना रहे हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, पिछले बार हमको इतना मिला था और इतना उसमें से खर्च हुआ और ये हमें सफलताएं मिली, तो वो सब अपने अपने विभाग और मंत्रालयों के बना रहे हैं। लेकिन अब सोसाइटी के बारे में आप क्या करेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री में भी शायद इतनी सारी इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, किसान है और भी समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, इनकी कैसे राय ली जाए। चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं तो इसीलिए यह सिस्टम है कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं बजट से पहले इन अलग अलग संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलते हैं। वो किसानों के प्रतिनिधि से मिलेंगे, उद्योग के अलग अलग क्षेत्र के जो हेड हैं वो उनसे मिलेंगे, जो इसको लेकर के जो संगठन बने हुए हैं उनके प्रमुखों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे क्या होना चाहिए, क्या परेशानियां हैं, क्या किया जाए। तो इस तरीके से फिर वित्त मंत्री अपना मानस बनाते हैं कि इस बजट में किसको छूट दी जाए, किसको क्या प्राथमिकता देनी है, कैसे उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो ये वर्ड था बजट पूर्व बैठकें जो आज से शुरू हो गई हैं। मित्रों दूसरी खबर आपने ये भी सुनी होगी कि आज हमारे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक ले रहे हैं। याद रखिए दो शब्द होते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में भी नहीं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जितने भी मंत्री हैं उसमें, चाहे फिर कैबिनेट मंत्री हों, चाहे उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हों या वैसे राज्य मंत्री हों, सबके सब मंत्रियों को कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद। फिर इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मंत्रिमंडल के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं, उसमें कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं और जो मंत्रिमंडल है सही मायने में यही सरकार हुआ करती है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये दो शब्द हैं और दोनों शब्दों के बारे में आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। दोस्तों तूफान वायु आने वाला है, आप देख रहे हैं कि गुजरात तट पर उसके आने की संभावना है और फिर आगे क्या होगा अभी हम देखते हैं। लेकिन यहां मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहला तो यह है कि तूफानों के ऊपर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें, ज्योग्राफी में जाकर तूफान कैसे उत्पन्न होते हैं और फिर कैसे वो ट्रेवल करते हैं, थोड़ी सी जानकारी आप लेने अच्छा होगा। दूसरा यह कि अभी वायु तूफान आने वाला है, देखिए कि उसकी क्या इंटेंसिटी होती है ना, उसके आधार पर फिर हम निर्णय लेंगे। क्योंकि यहां से दो चीजें हमें मिलेंगी, एक तो वायु के बारे में, तूफान के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, कहां से उत्पन्न हुआ, कहां चला, किसने नाम रखा। मैं जानबूझकर के अभी इन बातों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। और दूसरा यह है कि अगर इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो जो आपदा प्रबंधन किया गया वो कैसे किया गया, इसके बारे में भी आज खबरें थी कि किस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी उसकी बैठकें ले रही हैं, फिर आपदा प्रबंधन के महानिदेशक का स्टेटमेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो एक तरह से प्रबंधकीय स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे होता है, और ये बकायदे आपके सिलेबस में है भी। फ्रेंड्स, दो दूसरी छोटी छोटी खबरें हैं, वो भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। एक आपने परसों न्यूज में सुना होगा, कल के अखबारों में भी है और आज उस पर एडिटोरियल कमेंट भी है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में इनकम टैक्स के 12 ऑफिसर्स को समय से पहले उनके कार्यकाल से मुक्त कर दिया गया। उन पर भ्रष्टाचार के और दूसरे तरह के आरोप थे। अब देखिए, ये कंटेंट है, कह लीजिए एक तथ्य है, अलग से तो इस पर कोई प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन यदि कुछ ऐसा पूछा जाता है कि सरकार नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कर रही है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठा रही है, तो इसे आप बकायदे एक तथ्य के रूप में डाल सकते हैं कि इतने हाई ऑफिसर जो कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको हटाया गया है। वो बहुत हाई रैंक होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें बात करें तो एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर ये रहे हैं। तो सरकार इसके जरिए ये मैसेज देना चाह रही है कि जो करप्शन है नौकरशाही में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मित्रों, आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक छोटी सी खबर है और इस तरह की अलर्टनेस आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के प्रति दिखानी ही चाहिए, और वो ये है कि आपको मालूम है कि 2014 में भारत सरकार ने 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य दिया है, और वह भी 2022 तक। ये 2022 तक हम 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। इसमें 100 गीगावाट का था सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा और रिमेनिंग जो 15 होगा उसमें छोटी बल्पन बिजली परियोजनाएं, स्वच्छ ईंधन वगैरह के माध्यम से था। इसमें अभी जो हमारा उत्पादन है ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसमें हमें कहां तक सफलता मिली है। तो मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया आंकड़ा है कि हमने अभी जो ऊर्जा की क्षमता है वो 79 गीगावाट हासिल की है। अक्षय ऊर्जा याद रखिए, सौर ऊर्जा नहीं, अक्षय ऊर्जा। 175 के अगेंस्ट में हम केवल 79 तक पहुंचे हैं, और इसमें जो पवन ऊर्जा है वो है 35 और सौर ऊर्जा है वो 26 गीगावाट। मतलब हम अभी काफी पीछे हैं, लेकिन फिर भी मंत्रालय ने कहा है कि 2022 तक का जो हमारा लक्ष्य है वो 175 गीगावाट उत्पादन का है और हम इसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक डेटा है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, और खासकर अभी जो सितंबर में आपके जो मेन एग्जामिनेशन होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए। मित्रों, आज के करंट कंटेंट के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया, संशोधित मूल्य और कैग के दायित्व। चूंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं खासकर मेन में। इसमें जो संशोधित मूल्य है ये पहली बार इस तरह से पढ़ने को मिल रहा है, और ये अखबारों में आया भी नहीं है ज्यादा, और सच पूछे तो इस पर आर्टिकल भी पढ़ने को नहीं मिले हैं। हिंदू में ये आर्टिकल जरूर छपा है, इसका हिंदी वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा, मुझे यह आर्टिकल थोड़ा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। आइए अब मुख्य विषय के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक वायदा किया था, और वायदा यह किया था कि वो बकायदे 2024 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में हर घर को नल से पानी की सप्लाई कर देगी, या यूं कह लीजिए कि पाइप से पानी की सप्लाई कर देगी, और इस योजना को उन्होंने नाम दिया है जो मैंने कहा नल से जल योजना, यानी कि हर घर को नल से पानी मिलेगा। नल से पानी मिलने का क्या अर्थ है? देखिए, इससे इसके 2-3 अर्थ हैं। पहला तो यह है कि अगर आपको नल से पानी मिल रहा है इसका मतलब है कि पानी की जो समस्या है वो खत्म हो गई है, यानी कि हर व्यक्ति को कम से कम पेयजल तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि पेयजल को लेकर के हमारे देश में कितना बड़ा संकट है। मैं बताने की स्थिति में अभी नहीं हूं, वक्त कम है, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड का मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स आज, और उसमें बहुत सारे खूबसूरत डेटा दिए हुए हैं, बहुत सारे खूबसूरत डेटा, और मैं चाहूंगा कि यह डेटा आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये 5 साल तक काम आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। सरकार इसको कितनी प्राथमिकता दे रही है आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी जब सरकार बनी है तब बकायदे एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है, अलग से मंत्रालय बनाया गया है जिसके मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ये इस योजना को देखेंगे। मतलब अभी भी आप सोच करके देखिए कि हमारे 60 करोड़ लोग भारी जल संकट से जूझ रहे हैं, तो नल के जरिए आप उन्हें पानी पहुंचा देंगे, घर घर पानी पहुंचा देंगे। दूसरा है कि जो नल से पानी आएगा, जो पीने का पानी आएगा, वो शुद्ध पानी होगा। अशुद्ध पानी की वजह से हमारे यहां इतनी बीमारियां हो रही हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अभी गर्मी के दिनों में आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कितना भयानक रूप से जल पेयजल का संकट हो गया है। तो उनको पेयजल भी मिल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जो जल मिलेगा वो शुद्ध जल मिलेगा, तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो इसके तहत ढेर सारे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, और स्पेशली ये दिया गया है कि जो हमारी भूमि के सतह पर जो जल है, यानी कि जब बरसात होती है तो उसका पानी, आप हमारे यहां का तो ज्यादातर जो पानी है लगभग 20% पानी हम यूज कर पाते हैं बरसात का, 80% पानी जो है हमारा बह जाता है। कैसे हम उस पानी को रोकें, कैसे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाएं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, इन सब पर बहुत ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है। मित्रों, यहां एक तथ्य आपको और बताना चाहूंगा कि जो पानी है, जो जल है, वो बेसिकली राज्य सूची का विषय है। कुछ लोगों का अब यह भी कहना है कि नहीं, इसे कम से कम समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए क्योंकि राज्य इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आगे चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि सन 1950 में भारत में प्रति व्यक्ति 5000 घन मीटर जल की उपलब्धता थी, जो अब घटकर केवल 1400 घन मीटर रह गई है। 5000 से घटकर के 1400, और जैसे ये 1000 हो जाएगी वैसे ही फिर भारत को औपचारिक तौर पर फॉर्मली पानी की कमी वाला देश घोषित कर दिया जाएगा। और यह कहा जाता है कि इसके लिए बहुत समय बाकी नहीं, हो सकता है कि 2020 में ही ऐसे हो जाए। और बकायदे जो हमारा जो आपके थिंक टैंक जो नीति आयोग है उसने साफ साफ कही दिया है कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसी 21 जो शहर हैं, 2020 तक इनका तो जो भू जल है वो लगभग खत्म सा ही हो जाएगा। सुनने में ये बात बहुत आसान सी लगती है दोस्तों, लेकिन है बहुत ही चुनौतीपूर्ण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। आज मैं इसको लेकर के कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और खासकर इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मैंने एक आर्टिकल को लेकर के, सुरक्षा पर जो आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया था उसको लेकर के मैंने जिस तरीके से प्रयोग करने को आप सबसे कहा था, आप में से बहुतों ने प्रयोग किए हैं। शायद इतनी बड़ी संख्या में किसी भी मेरी बात को समर्थन नहीं मिला हो और आप लोगों ने एक्शन में भी नहीं ढाला है, आपके ईमेल से जैसा कि मुझे पता लगता है बहुत आप लोगों ने प्रयोग किए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आप सबको मिले हैं। जब आप उसके सकारात्मक परिणाम बताते हैं तो देखिए स्वाभाविक तौर पर मेरा भी उत्साह बढ़ता है, और मुझे लगता है कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है और इससे ऊर्जा मिलती है। तो मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम मैं बता रहा हूं। ईमेल लिखने वाले भारती साहू, कमलेश कुमार, प्रवीण चौरसिया छतरपुर मध्य प्रदेश से, वरुण कुमार, दिवाकर दास रांची झारखंड से, ओंकार रविन्द्र कुलकर्णी अमरावती महाराष्ट्र से, भानु वैद्य सैयद अंसारी, रामबाबू चित्रकूट उत्तर प्रदेश से, मानस झा और बैजनाथ प्रसाद साहू, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।